ओम शांति। आप सभी का क्लास कराएंगी आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, जिनका करतल ध्वनि के साथ हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपकी क्लास का विषय ही है शक्तिशाली बनने के लिए ब्रह्मा बाप समान आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार। ब्रह्मा बाप जैसे संपन्न और समान बन गए, इसी प्रकार हम भी कैसे बने, इस विषय पर बहुत अच्छी क्लास करा रहे हैं। विश्व कल्याण के प्रति अनवरत, निष्काम, निस्वार्थ, अथक सेवाधारी, त्याग, तपस्या, मुहूर्त आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आप 26 साल से ज्ञान में एवं 16 साल से समर्पित बाबा के ईश्वरीय सेवा में दिल के हर संकल्प को बाप समान बनाने वाले, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, ऐसे सदैव एक बाबा दूसरा न कोई, दिल में बाबा को समाने वाले दिल के चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं। दिल्ली में ही आपने अपनी मेडिकल की पढ़ाई की, वर्तमान में आप ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट एवं कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन के वरिष्ठ सलाहकार हैं। आप नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के भी सदस्य हैं। आपको विगत 22 सितंबर 2008 में राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा एक्सीलेंस इन कार्डियोलॉजी पर सम्मानित किया गया। आपको 2006 में भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कार्डियोलॉजी पर भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम द्वारा ऑनर दिया गया। सन 2005 में मेडिसिन में योगदान देने हेतु यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार जिस्मानी से रूहानी डॉक्टर बनकर बाप दादा को दिल से दिल तक प्रत्यक्ष करने की बेहद सेवा में आप निरंतर सेवारत हैं आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी।
ओम शांति। हम सभी बाबा के चुने हुए लाखों में से एक बाबा, कहता है कोटों में कोई, सचमुच में कोटों में कोई और को में भी कोई, ऐसे बाबा के बच्चे हैं। और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हम सभी बाप समान बने, जल्दी जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। जैसे ब्रह्मा बाबा बाप समान बने, फरिश्ते बन गए, उनके जीवन में बहुत सारी जिम्मेवारियां थी, उन सब जिम्मेवारियों को निभाते हुए कैसे ब्रह्मा बाबा बाप समान बन गए, फरिश्ते बन गए। तो आज हम उन्हीं बातों पर, क्योंकि हम, हमारा लक्ष्य भी वही है जो ब्रह्मा बाबा का था। बाबा अभी 41 साल से सूक्ष्म वतन में हमारी इंतजार कर रहे हैं। 69 से अभी तक कितना समय हो गया, 41 वर्ष। और 41 वर्ष में उनके एक ही आश है हम बच्चों से, कौन सी आश है, कि हम भी जल्दी जल्दी क्या बन जाएं, क्या बन जाएं, संपन्न और संपूर्ण बन जाएं। तो आज हम इसी बात पर आपसे चिंतन करेंगे। इसी के लिए हम पहले 2 मिनट के लिए फिर दोबारा से बाबा को बहुत प्यार से अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, ताकि बुद्धि से अपने, जैसे मोबाइल तो स्विच ऑफ कर दीजिए अगले एक घंटे के लिए, और साथ साथ अपने मन के भी दूसरे संकल्पों को स्विच ऑफ कर दीजिए। सिर्फ एक मैं आत्मा हूं, इसी एक संकल्प में, और बाबा का बच्चा हूं, इसी एक संकल्प में एक 2 मिनट के लिए स्थित हो जाते हैं। उसके बाद हम ये आपसे इस पर चिंतन शुरू करेंगे, कैसे हम ब्रह्मा बाप समान बने, अर्थात सदा शक्तिशाली बने। चलिए। तो आज का विषय है सदा शक्तिशाली बनने के लिए ब्रह्मा बाप समान आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार और फरमान बरदार कैसे बने। बाबा के दो तरह के बच्चे हैं, एक तो बच्चे हैं स्नेही बच्चे हैं और दूसरे योगी बच्चे हैं, स्नेही सहयोगी और दूसरे हैं स्नेही सहयोगी और योगी बच्चे हैं। और बाबा का एक नियम है, बाबा का एक, जैसे बाबा जो हमारा सबका बहुत बहुत प्यारा है, और बाबा जो भी बाबा से स्नेह करता है, जो भी बाबा का सहयोगी है, बाबा के कार्य में सहयोगी है, बाबा मदद जरूर देता है, किंतु जो स्नेही सहयोगी सिर्फ बच्चे हैं वो बच्चे बाप से मदद ले नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन बाप से निरंतर नहीं रहता है, उनका वो योग में कमजोर रहते हैं। और जो योगी बच्चे हैं उनका कनेक्शन निरंतर बाप से बना रहता है, और निरंतर बाप से बना रहता है इसलिए वो बच्चे जब बाबा मदद दे रहा है उस समय वो उस मदद को खींच लेते हैं, शक्तियों को खींच लेते हैं, और शक्तियों को खींच लेने के कारण समय पर जब भी कार्य में शक्तियों की आवश्यकता होती है वो विजयी बन जाते हैं। तो स्नेही बच्चे कभी विजयी बनते हैं कभी हार खाते हैं, किंतु जो योगी बच्चे हैं वो सदा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि बाप की विजय, बाप से जब भी उन्हें आवश्यकता होती है शक्तियों की, मदद की, वो तुरंत मिल जाती है और वो सदा विजयी बनते हैं। तो अब विजय किस आधार पर हमें मिलती है, क्योंकि बाबा हमारा दिलाराम है, और हम कहते, वैसे भी कहते ना, बाबा ने एक बार पिछली मुरली में कहा था, लास्ट ईयर कहा था कि बाप कहां रहता है, हमारा बाबा कहां रहता है, बाप हमारे दिल में रहता है, और हम कहां रहते हैं, हम बाप के दिल में रहते हैं। और बाबा जो है जब हमारे दिल में रहता है तो हम, बाबा सदा ही हमारे समीप है, बाबा कभी हमसे दूर है क्या, बाबा हमसे कितने दूर है, परमधाम कितने दूर है हमसे। अच्छा, आप जहां आप रहते हैं वो आपका घर कितने दूर है आपके यहां से, किलोमीटर में देखें तो बहुत किलोमीटर, दिल्ली, दिल्ली में अगर आपका घर है दिल्ली देखें तो कितने दूर होगा, 700 किलोमीटर होगा, इंदौर देखें तो इंदौर भी कुछ तो दूर होगा, 700-800 किलोमीटर दूर होगा, किंतु वैसे मन से जाओ तो कितने दूर है, सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। तो बाबा हमसे कितने दूर है, सिर्फ एक सोच की दूरी पर है, सिर्फ एक सोच। अगर हम दिल से समीप हैं बाबा के तो बाप के, बाप सदा ही हमारे समीप है, किंतु अगर हम यहां पर हैं मधुबन में रह रहे हैं और मधुबन में रहते भी अगर बाप से हम दिल से दूर हैं, हमारे दिल कहीं और है, हमारे दिल में कोई और है, तो हम यहां रहते भी बाप से दूर हैं, किंतु हम बाहर रहते हैं, भले इंदौर में रहते हैं, भले हम दिल्ली में रहते हैं, भले हम मुंबई में रहते हैं, किंतु बाप को अपने दिल में रखते हैं, बाप के दिल के समीप हैं, तो हम बाप सदा ही हमारे समीप हैं। अब बाप ने, ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों सदा ही एक साथ रहे, वो किस कारण से रहे, तो ब्रह्मा बाप के चार कदम थे, मुख्य चार कदम थे जिसके कारण ब्रह्मा बाप जल्दी से फरिश्ता बन गए, और हमें भी बनना ही है। कई बार हम कहते हैं ना हमारा सहज राजयोग है, किंतु कई बार क्या होता है कि हम जो ब्रह्मा बाबा ने जो कदम उठाए उसमें हम लूज हो जाते हैं। जितने भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का मतलब ही है कि ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाबा के हर कदम पर कदम रखना, अर्थात जैसे हम, जैसे ब्रह्मा बाबा का आचरण था वैसे ही हमारा आचरण हो, अर्थात वैसे ही हमारे कर्म हो, और जैसे ब्रह्मा बाबा का उच्चारण था वैसे ही हमारा उच्चारण भी। तो पहला कदम जो बाबा का था वो था आज्ञाकारी। अब आज्ञाकारी जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने जो किया वही हमें भी करना है, तो हमें बाबा ने आज्ञा दी हुई है हर चीज के लिए, अमृत वेले से लेकर रात तक क्या संकल्प करना है, क्या बोल बोलना है, क्या कर्म करना है, संबंध संपर्क में कैसे आना है और किस समय, सुबह के समय क्या करना है, दोपहर के समय क्या करना है, रात के समय क्या करना है, हर एक के लिए आज्ञा दी हुई है जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। जैसे हम आज एक दिनचर्या लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वैसे बाबा कहते थे कि बच्चे दिनचर्या में, कई बच्चे क्या करते हैं सहज राजयोग होने के कारण क्या दिनचर्या में लाइट हो जाते हैं और फिर क्या होता है संबंध संपर्क में टाइट हो जाते हैं, कर्म में भी टाइट रहते हैं, हमेशा डिफिकल्टी फील करते रहते हैं। तो बाबा ये कहते थे बच्चे दिनचर्या में टाइट रहो, अपनी दिनचर्या में, अपने नियमों में, मर्यादाओं में टाइट रहेंगे तो क्या होगा, आप संबंध संपर्क में लाइट रहेंगे, कर्मों में लाइट रहेंगे। अर्थात अपनी दिनचर्या में, अपने नियमों में, अपने ब्राह्मण परिवार के नियमों में, उनमें लूज मत बनो। जो ब्रह्मा बाबा ने किया उसे टैली कर लो, बाबा को तुम कॉपी करो, एक्यूरेट बाबा जैसे करते थे वैसे हम करें सुबह से लेकर रात तक, तो हम देखेंगे हमारी स्थिति कैसी। जैसे ब्रह्मा बाबा कैसा था, ब्रह्मा बाबा सबको संतुष्ट करते थे और हरेक व्यक्ति जो कैसा भी हो वो ब्रह्मा बाबा संतुष्ट रहता था और खुशी में नाचता रहता था। एक बार ब्रह्मा बाबा के सामने गया, मन में बहुत सारे विचार लेकर के जाता था, मैं बाबा से पूछेंगे, वहां जाके सब कुछ भूल जाता था। और बाबा ही सामने से पूछते थे बच्चे कैसे हो, बच्चे ये चाहिए, जो मन का संकल्प था बाबा पहले ही बोल देते थे। तो ऐसी स्थिति हमारी भी हो तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, अभी हम आपसे तो पहले स्टेप पर हम बात करते हैं। पहला स्टेप आज्ञाकारी, तो हमें आज्ञाकारी में पहला बाबा की आज्ञा है कि जैसे मैंने बताया कि अमृत वेले से रात तक क्या संकल्प करने हैं, क्या बोल बोलने हैं, क्या कर्म करने हैं और कैसे संबंध संपर्क में आना है, अर्थात और किस समय पर कौन से संकल्प करने हैं। जैसे अमृत वेले हमें क्या संकल्प करना चाहिए, अमृत वेले हमें कैसे संकल्प करने चाहिए, अमृत वेले हमें जब योग में उठते हैं तो हम, क्योंकि अमृत वेला हमारे दिन की शुरुआत है तो बाबा ने इसके लिए आज्ञा दी हुई है कि सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, क्योंकि यही वो समय है, बाकी सारा दिन हम कितना मर्जी योग करें यही एक समय है जिस समय हमारे विक्रम विनाश हो सकते हैं। दिन के समय कितना मर्जी हम योग लगाएं तो हमारे विक्रम विनाश नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं, रात में जब हम हमारी नेचुरली जो हमारी नींद में जब उठते हैं हम, एक होती डेल्टा स्लीप, बहुत गहरी नींद को डेल्टा स्लीप कहते हैं। डेल्टा स्लीप में हम क्या, हमें को उठा के यहां से यहां भी रख दे हमें पता नहीं लगता है। नॉर्मली हम एक दिन में 15 संकल्प करते हैं एक मिनट में, किंतु रात के समय जब गहरी नींद में होते हैं हमारे संकल्प 2 या 3 हो जाते हैं, वो भी सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, कॉन्शियस तो संकल्प चलते ही नहीं। तो जब सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे संकल्प 2 या 3 ही होते हैं, वो भी सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। और शिव बाबा के कितने संकल्प होते हैं, एक भी संकल्प बाबा को नहीं आता है, 0 संकल्प है बाबा को। ड्रामा में जब जैसा होना हो बाबा कहते मैं कुछ नहीं करता हूं, ड्रामा अनुसार ड्रामा मुझसे कराता है, कब मुझे आना है, कब मुझे क्या बोलना है, वो भी ड्रामा ही करा देता है। पीछे था ना प्रश्न था ना एक दिन 5-6 दिन पहले मुरली में, तो बाबा को संकल्प नहीं चलता है, ब्रह्मा बाबा को एक ही संकल्प चलता है, जल्दी जल्दी मेरे बच्चे संपन्न और संपूर्ण बने। तो हमारा शिव बाबा से कनेक्शन कब हो सकता है, जब हमारे 2 संकल्प हों, 0 1 2 है ना, अगर मेरे 15 हो तो कनेक्शन हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो यह सुबह का अमृत वेले का समय ऐसा है जिसमें कम पुरुषार्थ में उठे, बाबा को गुड मॉर्निंग किया और बाबा की याद में बैठ गए, गुड मॉर्निंग करके ब्रश करके मुंह हाथ धो के फ्रेश हो गए, बड़ी उमंग उत्साह से, प्यार से और खुशी से बाबा की याद में बैठ जाओ। ये बाबा की पहली पहली आज्ञा है। और बाबा ने कहा मैं जो हूं जैसा हूं और बाबा जो है जैसा है, उसको यथार्थ समझ करके उसकी यथार्थ परख के साथ मुझे घर में याद करो, क्योंकि फरिश्ता स्थिति में विक्रम विनाश नहीं होते हैं, बीज रूप स्थिति में विक्रम विनाश होते हैं। फरिश्ता स्थिति में विक्रम नहीं होते हैं किंतु उसमें विक्रम विनाश नहीं होते हैं। फरिश्ता स्थिति में से ऊपर जब बीज रूप में जाते हैं तब हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं। तो इसे बड़ा सिंपल सा कि अर्थात मैं आत्मा जीरो, मेरा बाप जीरो, और अभी तक जो कुछ बीता जीरो लगा करके, तीन बिंदी जो बाबा कहते हैं, वो उस अभ्यास में टिक जाओ। और एक इसमें चार बातें हैं जब भी हम योग करना शुरू करते हैं, क्योंकि बुद्धि में तो ज्ञान भर गया, बाबा ने जो भी ज्ञान हमें दिया वो बुद्धि में भर गया है, किंतु मन में बुद्धि, हमें दिव्य बुद्धि मिली बाबा से, किंतु मन जो है हमारा, मन और संस्कार हमको परिवर्तन करने हैं। अब मन को परिवर्तन और संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए मन में चार बातें मुख्य होती हैं, जो कि हमें बाबा से, बाबा और हमारे बीच यही दूरी है, मन की दूरी है, संस्कारों की दूरी है। मन में चार बातें भरी हुई हैं, एक तो देह, अपनी देह, दूसरा देह के संबंध, तीसरा देह के स्वभाव संस्कार, और चौथा है देह के पदार्थ। तो देह तो हम अभी अपने आप से बात करें, ये अमृत वेले बात करने के लिए, किंतु दिन में चलते फिरते बात कर सकते हैं ये बात। तो ये अपने आप से बात करें कि मुझ आत्मा ने, इस देह के साथ मेरा संबंध जन्म से ही है, और इस देह के लिए मैंने कितना नहीं किया है, सुबह से लेकर रात तक मैं देह के लिए कितना करता हूं, कितना ध्यान रखता हूं, क्या देह मुझे साथ देती है, क्या देह मुझे सुख देती है? बल्कि जितना हम देह के ज्यादा तैयारी, ज्यादा देह का ध्यान रखते हैं, उतना ही ज्यादा देह हमें तंग करती है। कितना भी मेंटेन करते करते आज बूढ़े हो ही जाते हैं तो भी बीमारी आती है ना, जितना इसको सवारो उतना ही और बिगड़ती जाती है। जितना जीव को, जीव की सुनो, आंख की सुनो, नाक की सुनो, कान की सुनो, और ही इंद्रियां कमजोर होती जाती, मन कमजोर होता जाता। तो ये देह से भी मुझे दुख और धोखा ही मिला अभी तक। फिर देह के संबंध देखें, जो भी संबंध है, आपके माता पिता रहे, युगल है, या पति या पत्नी है, या बच्चे हैं आपके, या दोस्त हैं, तो उनसे भी हमें क्या मिला है? भले आपको आज 30 साल हो गए इनकी पालना करते हुए, आज क्या आपसे कोई संतुष्ट है, ये आप किसी संतुष्ट हैं? अपने मन से बात करो, क्या समझते हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं? आपके घर वाले आपसे खुश हैं? आपके बच्चे आपसे खुश हैं? खुश हैं? जिनके खुश हैं वो हाथ उठाओ। जिनके घर वाले आपसे बिल्कुल खुश हैं, 100% खुश हैं, बहुत थोड़े होते हैं अगर आप सच्चे, अभी तक आपने शायद पूछा नहीं होगा, बहुत ध्यान से उनसे पूछ के देखो तो लोग कहेंगे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन उनको निकलते हैं। तो फिर देह के स्वभाव संस्कार, देह का स्वभाव है 5 विकार, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये देह के स्वभाव है। और देह के संस्कार क्या है? आलस्य, पहला संस्कार है आलस्य, देह फील होते ही आलस्य आने लगता है, अलबेलापन, छोड़ो आज नहीं कल कर लेंगे, कौन सी जल्दी पढ़िए। फिर तीसरा है दूसरों में दोष निकालना, मैं ठीक करता हूं तो वो गलत करता है, वो गलत करता है, वो गलत करते हैं। चौथा है बदला लेने की भावना, थोड़ी सी बात मेरे हिसाब से नहीं की तो दूसरा व्यक्ति उससे लगता है कि इसको हम दिखाएंगे कब कैसे, उससे हम समय पर बदला लेंगे। पांचवा है शक, शक करना, देह का संस्कार है शक करना। छठा है अनुमान लगाना। सातवां है चिंता, देह है ना तो देह के लिए चिंता होती नहीं होती, कल बीमार ना हो जाए, कल मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए, कल ऐसा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। आठवां है भय, नौवां है प्रेशर, हर समय प्रेशर में रहना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, इस चीज का प्रेशर, उस चीज का प्रेशर, जल्दी में मतलब रहना। इसलिए आदमी क्या कर समझता है, क्या बोलता है आजकल, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, मुझे खाने की फुर्सत नहीं है, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। क्या वो काम के कारण बिजी है या कुछ और कारण बिजी है, आप क्या समझते हैं? काम तो लोग दो दो घंटा गप्पे मार के निकाल देते हैं, टीवी के सामने बैठ के दो दो घंटा, वो जो कहते हैं ना मैं मेरे को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, दो घंटा टीवी देखते रहेंगे बैठ के, उस समय सांस नहीं ले रहे क्या? सांस तो हमेशा ही लेते रहते हैं ना। एक्चुअली मन में विचार अधिक चलने के कारण बिजी है, अंदर मन में क्योस फील करते रहते हैं, मन में विचार के पीछे विचार, विचार के पीछे विचार चलता रहता है, इसलिए वो अंदर ऐसा फील करते हैं मुझे फुर्सत नहीं। और जैसे दादी जी हैं, जानकी दादी जी है ना हमारी, हमारी दादियां हैं, रतनमणि दादी जी हैं, इन दादियों के पास जाओ, दादी दादियों को दादी हमें मिलना है, दादी तो कहती हैं आओ मिलो मुझसे आकर के, वो कभी नहीं कहते हम बिजी हैं। हम लोग भी फील करते हैं, जब हम ज्ञान में नहीं थे, जब ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में था, तो हम इतना प्रेशराइज फील करते थे टाइम से। डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट्स आते हैं तो क्या करते हैं अधिकतर, पहले तो उनको दवाई लिख के दो, पहले 100 पेशेंट तो लाइन में लगे हुए हैं, और फिर उसके बाद बोलेंगे मुझे मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। तो हम लोग इतना प्रेशर महसूस करते थे कि ये पेशेंट मुझसे इतना क्यों पूछता है, तुम्हें जो खाना खा लो, टाइम नहीं है, मेरा दिमाग नहीं खाओ। किंतु जब से हमें ज्ञान में आए, बाबा का बने, और आज हम कभी ये शब्द इस्तेमाल करते नहीं कि हम बिजी हैं, भले कितनी मर्जी सेवाएं हों, कितनी मर्जी जिम्मेवारियां हों। तो ये मन के विचारों की बात है, अगर मन के विचार कम चलते हैं तो आप मन में इजी महसूस करते हैं, अगर विचार तेज चलते हैं तो आप मन में बिजी महसूस करते हैं। तो ये जो है जल्दी महसूस करना, आज सबके अंदर ही जल्दी, बिकॉज विचार बहुत तेज चलते हैं। और लास्ट है ईर्ष्या, ये देह के संस्कार है। तो देह के स्वभाव पांच, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और ये 10 उसके संस्कार है। और देह के पदार्थ क्या है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपका मकान घर टेलीफोन मोबाइल है ना, ये सब आपकी कपड़े, ये सब आपके पदार्थ हैं। तो ये जो चार बातें हैं इनसे हमने बहुत निभाया है, पिछले 2500 वर्ष इससे निभाते आए हैं, और आज भी हम इनसे संतुष्ट नहीं है, और ना हमसे कोई संतुष्ट रहा। तो हमें बाबा कहते हैं, बच्चे ये जो चार बातें, इनसे अपने आप से बातचीत करो, अपने आप से चिंतन करो, रियलाइज करो मैं कौन हूं, क्या मैं देह हूं, क्योंकि मन में ही चार बातें फंसी पड़ी हैं। और बाबा की डायरेक्शन थी, अगर हम चाहते हैं बाप से मिलन मनाना अमृत वेले, तो ये चार बातें, चार रस्सियां हैं जो मन को नीचे खींचती हैं। बुद्धि एक गुब्बारे के रूप में है, उसमें ज्ञान की गैस भरी हुई है, बुद्धि ऊपर जाना चाहती है, मन में ये चार बातें हैं, रस्सियां हैं जो बुद्धि को नीचे की तरफ खींचती हैं। जब तक ये चार रस्सियां काटेंगे नहीं, तब तक हमारा कनेक्शन बाबा से नहीं हो सकता। हम ना तो सूक्ष्म अतर में बाबा की गोद का अनुभव कर सकते हैं, ना तो हम परम धाम में जाके बीज रूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो जब भी हम योग करना शुरू करें या सारा दिन चलते फिरते भी अनुभव करते रहें कि मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं, अपने आप से बात करने की आवश्यकता है। अमृत वेला उसी का पावरफुल होगा जो सारा दिन चलते फिरते ये अनुभव करे कि मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, वृक्ष के बीच में यहां बैठा चमकता हुआ सितारा हूं, मैं आत्मा यहां चमक रहा हूं और आत्मा से सात लाइट जा रही है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जिससे शरीर चल रहा है। अगर आत्मा मैं निकल जाऊं तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाएगा, मैं आत्मा ही शरीर को चला रहा हूं, ये चलते फिरते अनुभव करें। और जब मैं आत्मा हूं तो मेरे सर्व संबंध देह के साथ संबंधी के साथ नहीं है, मेरे सारे संबंध परमात्मा के साथ है, क्योंकि जितने भी संबंध है वो सब लेने वाले संबंध है, देने वाले नहीं है। सबको शांति चाहिए, सबको प्यार चाहिए, सबको खुशी चाहिए, कोई आपको देता नहीं है शांति प्यार खुशी, सब लेते हैं, बच्चे भी पत्नी भी पति भी क्या कहते हैं, मुझे प्यार दो शांति दो खुशी दो, कभी आप उनसे नहीं कह सकते कि आप हमको दो, देने वाला सिर्फ एक बाप है। तो उससे सर संबंध अनुभव करो, वो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर, वो सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर है। तो उससे हम बार बार वही मेरी मां है वही बाप है, तो मां का संबंध बाप का संबंध टीचर का संबंध शिक्षक का संबंध सतगुरु का संबंध भाई का संबंध दोस्त का संबंध साजन का संबंध और ससर्जन का संबंध उससे फील करें। और चौथा है पदार्थ, ये तो हो गए ना संबंध हो गए देखे संबंध, फिर स्वभाव संस्कार। आत्मा के स्वभाव ये सात गुण हैं, स्व माने आत्मा, भाव माना भाव, आत्मा के सात भाव हैं कौन कौन से, पहला ज्ञान, ज्ञान माने ABCD, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। वैसे ज्ञान तो बहुत बड़ा है क्योंकि सार रूप में ज्ञान चार बातों में आ जाता है, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। तो जितना हम ABCD पे चिंतन करते जाते हैं आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्रता से शांति आती है, शांति से प्रेम, प्रेम से खुशी, खुशी से आनंद और आनंद से शक्तियां। तो ये आत्मा के सात भाव हैं, सात शक्तियां कहो गुण कहो एनर्जी कहो, ये आत्मा के सात एनर्जी है। और आत्मा का संस्कार दो है मुख्य, जो बाप का संस्कार तो आत्मा का संस्कार, तो बाप आत्मा क्या संस्कार है, रहम दिल और कल्याणकारी। और आत्मा के पदार्थ क्या है, आत्मा के पदार्थ हैं दैवी गुण, इन सात गुणों से मिलकर के दैवी गुण बनते हैं। जितना ज्यादा अंदर दैवी गुण सात गुण होते हैं, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्तियां, उतना अधिक हमारे व्यवहार में जब कार्य व्यवहार में आते हैं तो हमारे व्यवहार में सत्यता झलकती है, हमारे व्यवहार में निर्भयता झलकती है, हमारे व्यवहार में अंतर्मुखता झलकती है, हमारे व्यवहार में सरलता नम्रता मधुरता उदारता धैर्यता गंभीरता रमणीकता सहनशीलता दृढ़ता संतुष्टता हर्षित मुक्ता झलकती रहती है। तो ये दैवी गुण हमारी प्रॉपर्टी है, उतना ही अधिक हम आज्ञाकारी बनकर के रहते हैं, उतना ही ज्यादा हम वफादार बनकर रहते हैं, उतना ही ईमानदार फरमान बरदार बनकर रहते हैं। अच्छा, ये आत्मा की रियल प्रॉपर्टी है। और जब हमारे अंदर ये प्रॉपर्टी है तो हम कहीं भी जाके अपना कुछ भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मान लीजिए जो आपकी प्रॉपर्टी आपके पास आज है, मकान है कार है, अगर आज भूकंप आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, मकान गया कार गई बैंक गया सब कुछ गया नहीं गया। किंतु अगर आपके पास सत्यता है ईमानदारी है निर्भयता है, लोग आपको जानते हैं ये आदमी ईमानदार है आज्ञाकारी है सच बोलने वाला है, तो आप तुरंत उसके आधार पे नया काम शुरू कर सकते हैं, नहीं शुरू कर सकते। तो ये आपकी रियल प्रॉपर्टी है। तो ये आत्मा के इन इन में सारा दिन चलते फिरते अगर मनन करें तो अमृत वेले बैठते ही ये हमारा कनेक्शन बाबा से हो जाता है। ये चार रस्सियां कट जाती हैं और आत्मा अपने आप ही ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो सुबह सुबह अमृत वेले ये संकल्प हम कर करके बाबा से योग लगाएं। और अधिकतर नॉर्मली क्या होता है, अमृत वेले हमारा योग कैसे लगता है, कुछ मिनटों के लिए बाबा के पास पहुंचते, कुछ मिनट भी नहीं, एक सेकंड के लिए बाबा के पास पहुंचते हैं, प्यार और खुशी में आके बाबा को याद करना चाहिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं, जैसे नॉर्मली हम 15 संकल्प एक मिनट में करते हैं, उसमें 7-8 सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, सबका 7-8 कॉन्शियस माइंड में होते हैं। जब हम फिर तो 15 पे नाम शांत होते हैं ना शांत होते हैं, 8 संकल्पों पे हम शांति की फीलिंग में आते हैं, थोड़ी शांति फील होती है। 6 संकल्प पे हमें प्यार की फीलिंग आती है, 4 संकल्प पे हमें थोड़ा सुख की अतिंद्रिय सुख की अनुभूति आती है। जैसे जैसे हम बाबा को एबीसीडी को याद करते रहते हैं ना, उसमें टिकते रहते हैं, तो क्या होता है, हमारे 8 संकल्प होते हैं, हम शांति की अनुभूति करने लगते हैं। हमें किसी चीज को देखने की आवश्यकता नहीं, सामने मूर्ति को देखें या सामने किसी बिंदु को देखें, नहीं, अपने अंदर उसका चिंतन करना शुरू करें, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ, एक एक संबंध की अनुभूति में जाएं। और संसार एक ड्रामा है, इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, परमात्मा इसका डायरेक्टर है, वो कर्म के सिद्धांत के अनुसार इसको डायरेक्ट कर रहा है, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा वाला, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। जैसे जैसे बार बार ये संकल्प टिकेंगे तो आपकी संकल्प कम होते जाएंगे, 8 संकल्प हो जाएंगे तो शांति फील होने लगेगी, विचार कम हो गए ना, शांति क्या है, विचारों का कम होना ही शांति है। और इसी संकल्प में और टिकेंगे तो क्या होगा, और विचार कम, 6 विचार हो जाएंगे, आपको थोड़ा प्यार महसूस हो, प्यार माना जिससे कल गलती हुई होगी ना, जहां आपने गुस्सा किया होगा, जहां पे आपने इरिटेट हुए होंगे, तो आपको ये क्या आएगा, नहीं मैंने गलती की, गलती उसकी नहीं थी, गलती मेरी थी, तो आपको उस आत्मा के ऊपर प्यार आएगा, उस आत्मा के प्रति ये आएगा सॉरी, मन में सॉरी की फीलिंग आएगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी गलती रियलाइज होगी, ईगो कम होगी। फिर और ज्यादा विचार इस पे और गहरे चले जाओ, जब सिर्फ एबीसीडी रह जाएगा तो आप क्या फील करेंगे, जैसे कि आप देह से अलग हो गए, आप अपने आप को लाइट की लाइट फील करेंगे, ये देह की फीलिंग खत्म हो जाएगी, आप अपने आप को देह से ऐसा फील करेंगे जैसे देह में मैं हूं ही नहीं, देह से आपकी फीलिंग जैसे इससे ऊपर उठ जाएंगे, ये अंदर अंदर चल रहा है, बाहर से नहीं, बाहर भले सामने लाइट हो ना हो, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की सामने फोटो हो ना हो, कहीं बैठे भी कर सकते हैं ये संकल्प करते करते करते, फिर और ज्यादा करेंगे खुशी की फीलिंग आ जाएगी, अतिंद्रिय खुशी की फीलिंग आ जाएगी, 2 हो जाएंगे ना संकल्प, ए और बी खाली रह जाएगा, आत्मा और बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस 2 ही चीज, तो आप क्या फील करें, बाबा की गोद में चले गए, जैसे आपने सामने कुछ देख नहीं रहे, आप अंदर हैं सिर्फ, ऐसा फील होगा सर बाबा की, बाबा ने मुझे अपनी गोद में समा लिया, ये आनंद की फीलिंग है। उस समय बाबा से रूहरिहान कर सकते हैं, जब बाबा की गोद में है ना, तो उस समय बाबा से रूहरिहान करेंगे तो बाबा से उस समय की फीलिंग में क्या होगा, आपको फील होगा जैसे सिर्फ बाबा रह गया, अपना भी लवलीन हो जाएंगे, तो वो फीलिंग है सर्वशक्तिमान की फीलिंग। और जब एक से भी कम संकल्प हो जाएगा तो आपको सिर्फ ये रहेगा मैं चमकता हुआ सितारा हूं, उस चमकते हुए सितारे की फीलिंग में जब चले जाएंगे वो परम धाम की स्टेज हो जाएगी, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे बाबा सामने चमकता हुआ सितारा, मैं चमकता हुआ सितारा। और उस समय क्योंकि आप मन और बुद्धि से वहां हैं, आत्मा तो यही है, उस समय आपको क्या फील होगा क्योंकि आप डिस्टेंट कनेक्शन तो आपका यहां पर इसी बॉडी के साथ है, तो उस समय आपके जो ये जो दिमाग में जो मॉलिक्यूल्स बने हुए ना, मैं ये, मैं सतीश गुप्ता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो भी आपका नाम है, जो भी आपका बिजनेस है, आपके बच्चे हैं, वो बुद्धि से, या आपने जो भी गलत काम किए हुए हैं पहले, विकर्म किए हुए हैं, वो सब रिकॉर्ड है यहां पर, वो मॉलिक्यूल्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे, वो मेमोरीज डिलीट होना शुरू हो जाएंगे और नई मेमोरीज बनना शुरू हो जाएंगे, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की सत्ता हूं, क्योंकि वो अनुभूति हो रही है वहां पर, मैं एक चमकता सितारा हूं, परमात्मा एक चमकता सितारा है, मैं उसकी संतान हूं, वो 7 गुणों का सागर है, मैं उस 7 गुणों का स्वरूप हूं, वो फिर यहां रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए। अर्थात ये नया एबीसीडी रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो उस स्थिति में 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट रुको तो ये पुराने मॉलिक्यूल्स विनाश होने शुरू होते हैं, जो हमने पाप कर्म किए हैं वो विनाश होने शुरू होते हैं और नए मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये हम सुबह सुबह अभ्यास करें। पर अमृत वेले का अभ्यास वो ही कर सकता है जो क्या करे, जो सारा दिन सोल कॉन्शियस का अभ्यास करता रहे। तो ये बाप की पहली पहली आज्ञा है कि कभी बहुत प्यार से और खुशी में आकर के अमृत वेला योग करो। प्यार से खुशी में आने का मतलब क्या हुआ, आप कहां पर आ गए, प्यार माना 6, खुशी माना 3 और 4, तो 2 पे आना सहज होगा नहीं होगा। अगर आप आलस में आके बैठे, सुस्ती में आके बैठे तो क्या होगा, आप वहां पहुंच ही नहीं सकते हो। और अमृत वेले का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है आनंद की स्थिति में पहुंचना। ये करके फिर आप अमृत वेला योग करने के बाद फिर आप अपनी दिनचर्या बनाइए, आज सुबह से लेकर मुझे रात तक क्या करना है, ये भी बाबा की आज्ञा है। अपनी दिनचर्या को सुबह सुबह फिक्स करो कि आज मुझे अभी मैं 5 से 6 में स्नान करूंगा, 6 से 7 में ये करूंगा, फिर मैं मुरली सुनने जाऊंगा, है ना। 5 से 6 स्नान करते समय मुझे कैसे बाबा की निरंतर याद बनाए रखनी है, इसका भी संकल्प बाबा ने दिया हुआ है कि जैसे ऐसे फील करो जैसे बाबा से वो शावर में पानी आ रहा है ना, या पानी आप डाल रहे हैं, जैसे बाबा से वो शावर आ रही किरने की, शांति किरने, प्यार की किरने, खुशी किरने मेरे अंदर आ रही। और ये बाबा का रथ है, मेरा रथ नहीं है, मैं इसकी सफाई कर रहा हूं, मेंटेनेंस कर रहा हूं। फिर अगर आप सुबह सुबह सैर करने जाते हैं तो उसी स्थिति में सैर करें, सातों गुणों का अभ्यास करते हुए। ज्ञान का सागर बाबा है, मुझ में ज्ञान आ रहा है, ABCD आ रही है, और मैं आत्मा बाबा कनेक्शन राम, इसकी फीलिंग में टिक जाए। पवित्रता के सागर से पवित्रता आ रही है, शांति के सागर से शांति फील करें उसको, प्रेम के सागर से प्रेम, खुशी के सागर से खुशी, आनंद शक्तियां, सातों गुण मिलके मेरे सारे एक रोम रोम को साफ कर रहे हैं, इस फीलिंग में टिकते हुए यो वॉकिंग करें। फिर मुरली कैसे सुने, बाबा ने उसकी विधि भी बताई है। बाबा ये फील करें बाबा मेरे लिए मुरली सुना रहा है, ये ना फील करें बाबा सबको मुरली सुना रहा है, बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुने। बाबा ने कहा था ना, मेरे लाडले बच्चे कहां सुनते हैं मुरली। लाडले बच्चे हमेशा गोदी में रहते हैं, हम तो लाडले हैं ना, सिक्की लदे हैं ना, तो बाबा धरती पे बाबा कहते हैं पैर ही मत रखो, तो बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा मेरे को गोद में बैठा के मुरली सुना रहे, जैसे लोरी सुना रहे और मेरे लिए सुना रहे। तो उस स्थिति में बैठ के मुरली सुनो, सामने भले कोई भी टीचर सुनाए पर बाबा की मुरली है तो बैठे भले सामने हैं किंतु बाबा की गोद में चले जाओ सूक्ष्म वतन में। योग क्यों लगा, 3 मिनट पहले योग क्यों लगाते हैं, बाबा की मुरली सुनने के बाद याद क्यों नहीं रहती है, क्योंकि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 15 है और बाबा की फ्रीक्वेंसी कितनी है मुरली पे, 1 या 2 पे बाबा मुरली सुना रहा है, और मेरे विचार चल रहे हैं 15, तो मेरे अंदर जाएंगे नहीं वो, बाबा की मुरली मेरे अंदर जाएगी नहीं, सुनते समय अच्छी लगेगी, बाहर जाएंगे पूछेगा ना कोई हमसे आज बाबा ने क्या सुनाया, याद नहीं आएगा, वो सुनाएगा तो हाँ बाबा ने यही सुनाया था, वैसे याद नहीं आएगा क्योंकि अंदर रिकॉर्ड ही नहीं हुई। जैसे रेडियो पे ट्यूनिंग करते हैं ना, अगर वो स्टेशन पे ट्यूनिंग करो तो आपका ट्यूनिंग मैच होती है, आवाज आती है, ऐसे अगर मेरी ट्यूनिंग भी 2 पर है तो ही मैं अंदर रिकॉर्ड होगी, तो रिकॉर्ड ही नहीं होगी। तो एकदम अवेक्ट स्थिति में बैठ के मुरली सुनिए। सुबह का रूप जो बच्चे मालिक बालक से मालिक का रूप, और मुरली के समय स्टूडेंट का रूप, और सारा दिन फिर बाबा ने कार्य व्यवहार के अंदर आने में भी बाबा ने आज्ञा दी हुई है, कैसे मुझे खाना खाना है, खाना भी बाबा की याद में खाना है, बाबा मुझे खिलाए मैं बाबा को खिलाऊं, ऐसे खाना खाने बैठे बाबा को भोग लगाया और फिर बाबा को ऐसे फील कर बाबा मुझे खिला रहा है मैं बाबा को खिला रहा हूं, मैं बाबा को मैंने खिलाया बाबा ने मुझे खिलाया, मैंने इस फीलिंग में बाबा खाना खाऊं। तो खाना खाने के लिए भी आज्ञा मिली हुई है, कैसे खाना खाना है, फिर ऑफिस में जाओ, दुकान पर जाओ, घर में काम करो, कैसे काम करो, बाबा की याद में काम करो, बीच बीच में मैं आत्मा में फील करो, सातों एनर्जी यहां से आत्मा से सारे शरीर में जा रही है, फील करते रहो। बाबा सागर है, उसमें से मुझ में आ रही है, बाबा मेरे साथ है, बाबा छत्र छाया के रूप में मेरे साथ है, बाबा का हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ है। तो ये बाबा की बार 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 उस फीलिंग में रहो, जितना इस फीलिंग में रहेंगे उतना हमारी शक्ति हमें बढ़ती जाएगी। फिर शाम के समय फिर आधा घंटा हो सके तो सैर करो, लंच के टाइम बाबा की याद में भोजन करो, है ना, बीच में पानी पियो तो बाबा को याद। बाबा ने कहा था ना पांच स्वरूप की ड्रिल करो, तो पानी हम लोग कैसे करते हैं, दिन में 8 गिलास तो पानी पीते हैं, कम से कम 10 गिलास भी पानी पीते हैं। तो पानी पीने से पहले जैसे पानी पीना शुरू करेंगे ना, तो 10 सेकंड तो ऐसे पानी रखा है, पानी लगातार कभी साथ साथ नहीं पीना चाहिए। अगर पानी एक साथ लगाकर मुंह में पी जाए, मुंह से पी जाए तो क्या होगा, हमें एक एसिडिटी की बीमारी, ये बाल खराब हो जाता है। कहते पानी सदा खाना चाहिए और खाना पीना चाहिए, अर्थात खाने को इतना चबाना चाहिए कि आपको उसको अंदर निकलने की फीलिंग ना आए, और पानी को घुट घुट करके पीना चाहिए। तो पानी जब पीते हैं तो पानी पीने के समय अनादि स्वरूप की स्थिति पहले घुट के साथ किया, दूसरी घुट के साथ कौन सी स्थिति है ना, देव आदि स्वरूप की स्थिति कर लिया, तीसरी घुट के साथ कौन सी मध्य स्वरूप की स्थिति, फिर ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप, है ना। तो इस तरह से हम हर बार ये अभ्यास करें। मैं तो अधिकतर ये कोशिश करता हूं कि जब भी पानी पीऊंगा ऐसे करूंगा, और हर खाना खाने से पहले मुरली रिवाइज कर लेता हूं। सुबह तो जैसे यहां से जाते हैं ना, खाना खाने बैठे, टेबल पे बैठे, तो मुरली जेब से निकाल ली, मुरली जेब में ही रखते हैं, तो मुरली जेब से निकाली, एक पढ़ ली, भले 4 लाइन पढ़ी, वरदान पढ़ लिया, स्लोगन पढ़ लिया, मीठे बच्चे पढ़ लिया, वो रिवाइज कर लिया, ताकि बुद्धि में जितना वो रहेगा, क्योंकि मुरली क्या है, 100% पॉजिटिव टीम है, 100% पॉजिटिव विचार, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति मुरली से मिलती है, और जैसे विचार होते हैं फिर वैसे हार्मोन निकलते हैं। अगर मेरे विचार नेगेटिव हैं, टेंशन वाले हार्मोन निकल आएंगे, अगर अच्छे विचार हैं, पॉजिटिव स्मृति है, तो अच्छे खुशी वाले हार्मोन निकलेंगे, और खुशी वाले हार्मोन निकलेंगे तो सारा दिन खुशी रहेगी, थकावट नहीं होगी, हम लाइट रहेंगे, और टेंशन वाले हार्मोन निकले तो भारी हो जाएंगे, इरिटेशन आएगी, जल्दीबाजी, चिंता होगी, गुस्सा आएगा बात बात पे। तो इस तरह से अपने आप को दिन में 8 बार, 10 बार, 12 बार हम ड्रिल कर सकते हैं, ये बाबा की डायरेक्शन है। फिर सोने से पहले अपने मन बुद्धि को खाली करो। साइकोलॉजी में एक नियम है कि हम ऐसे मन में ऐसे बैठ करके बाबा को बता नहीं सकते सारी बातें, और वो अंदर अंदर घूमती रहती हैं। लिख दो, चिट्ठी लिखो बाबा को, एक बाबा आज मेरे साथ ये हुआ, आज मुझसे ये गलती हो गई, आज मैंने ये काम करना था ऐसे गलत कर दिया, ये गलती मुझसे हो गई, आज उससे मैंने बात की, उसने मुझे ये बोला तो मुझे फील हो गया, है ना। जो भी हुआ, जैसा हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लिख के साइन करो बाबा को। और बाबा का हॉटलाइन फैक्स नंबर है, क्या है वो हॉटलाइन फैक्स, क्या है बाबा की, 000000। तो ये करके बाबा को बस ये फील करो, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और अब तक जो कुछ बीता मल्टीप्लाइड बाय 0, तो जैसे बाबा के पास चला जाएगा। और फिर अपना चार्ट भरो, ये बाबा की आज्ञा है, और फिर जो है फिर बाबा की याद में सोचो। और सोना हमारा कहां होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए, बाबा ने उसके लिए भी आज्ञा दी है। कौन सी आज्ञा है, बाबा ने कहा ये जो बेड है ना, ये बेड तो गैरेज है आपका, यहां पे बॉडी को पार्क करो, ये हमारी कार है, इसको पार्क कर दो, और फिर आप सूक्ष्म मतन आपका बेडरूम है, और बाबा की गोद आपका बेड है, तो बाबा की बेड में जाके सो जाओ। इस तरह से हमारी दिनचर्या बीतनी चाहिए, और जो इस तरह से बाबा की आज्ञा पर चलता है वो क्या बन जाता है, वो उसको बाप की दुआएं मिलती हैं, सर्व दुआएं बाप की मिलती हैं, और बाप की सर्व दुआएं मिलती हैं तो साथ साथ ब्राह्मण परिवार की दुआएं भी मिलती हैं, और जब दुआएं मिलती हैं तो हमसे लोगों को दिल की संतुष्टता अनुभव होती है। बाबा भी हमसे संतुष्ट है, ब्राह्मण भी संतुष्ट है, परिवार भी संतुष्ट है, और हम भी स्वयं से संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने बाप की आज्ञा को माना, तो ऐसा व्यक्ति डबल लाइट रहता है। तो मैं भी लाइट, दूसरे भी लाइट, ना मैं भारी होता ना दूसरे भारी होते। तो इससे हमारी स्थिति सदा लाइट बन जाती है। तो पहली बात है आज्ञाकारी, दूसरी बात है वफादार। वफादार दूसरी आज्ञा क्या है, वफादार दूसरी, दूसरा कदम है वफादार। ब्रह्मा बाबा ने कैसे दिखाया, एक बाप दूसरा ना कोई। इसका मतलब क्या है वफादार का मतलब है, जैसे स्त्री के लिए होता है ना, पति के लिए कहते हैं ना, इसी तरह से एक बाप दूसरा ना कोई। संकल्प से, बोल से, कर्म से, हर चीज में, संबंध संपर्क से, ये बहुत गहराई से महसूस करने की बात है। अगर मेरी कहीं भी आकर्षण किसी व्यक्ति में होती है, ये किसी साधन में भी मेरी आकर्षण जाती है, किसी की तरफ जरा भी लगाव, झुकाव, टकराव है, जरा भी किसके प्रति लगाव, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेवा करता है, इसके अंदर एक विशेष गुण है, तो भी मैं वफादार नहीं, इसको वफादार नहीं कहेंगे, ये वफादारी नहीं कहा जाएगा। 100% बाप के ऊपर आकर्षण होना चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई विशेषता भी है, कोई गुण भी है, वो बाप का दिया हुआ है, तो ये फीलिंग में जब मैं बाप, और मुझे कोई तकलीफ भी होती है, कुछ बात होती है, तो मुझे बाप को याद, बाप याद आना चाहिए, डॉक्टर याद नहीं आना चाहिए, संबंधी याद नहीं आना चाहिए। और मैंने प्रैक्टिकल में देखा है, जब हमारा हार्ट का प्रोग्राम होता है ना, कई बार हम इतना थक जाते हैं, दिन में भी पेशेंट देखे, दिन में सारा दिन बिजी रहेंगे, रात में भी पेशेंट, हार्ट के पेशेंट अचानक सीरियस हो जाते हैं, कुछ तकलीफ हो जाती है, तो सारी रात भी जागना पड़ता है, दिन में भी जागना पड़ता है। और कई बार सुबह सुबह इतनी थकावट हो जाती है कि हम, ऐसी हिम्मत होगी, ऐसा लगेगा जैसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, अभी उठ भी नहीं सकते। तो बाबा से, बाबा को साफ साफ बताओ, बाबा आज मैं इतना थक गया हूं, अभी मुझे 2 बज गए हैं, 2 बजे तक मैं सुबह से लेकर सुबह 4:30 से उठा, 2 बजे तक अभी जाग रहा हूं, अब मैं क्या करूं। बाबा देखो मेरे पास 1.5 घंटा बाकी है, 3:30 बजे तैयार होकर 4 बजे योग कराने जाना है, मुझे 1.5 घंटे में 6 घंटे जितनी नींद दे दो। सचमुच में बाबा 1.5 घंटे में इतनी अच्छी गहरी नींद का अनुभव करा देता है, 3:30 बजे एकदम फ्रेश होकर उठ जाते हैं। कई बार बहुत थके हों, हॉस्पिटल में भी सारा रात में भी कोई सीरियस पेशेंट्स आ गए तो हम उसमें लग गए, तो बाबा इतना, बाबा मैंने देखा 5-5 मिनट में भी बाबा इतनी अनुभूति करा देगा, फ्रेश कर देगा। कई बार बाबा कहते किरणों की मालिश ना, तो किरणों की मालिश कर देता है। जहां भी दर्द हो, जहां भी तकलीफ हो, इतने सारे हार्ट के पेशेंट ने देखा मैंने, उनके अनुभव इतने सुंदर सुंदर लोग अनुभव करते हैं। एंजाइना शुरू हो गया, मुझे बॉम्बे से फोन आया, पेशेंट का फोन है, डॉक्टर मुझे एंजाइना हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आईसीयू एम्बुलेंस बाहर आ गई है। मैंने कहा जाने से पहले एक बार आपसे फोन से बात करा दो मेरी डॉक्टर साहब से, तो फोन पे ही उसको बात कही और उसका एंजाइना ठीक हो गया, एम्बुलेंस वापस भेज दी। तो प्रैक्टिकली मतलब बाबा कैसे, अगर बाबा को हम सच्चे दिल से याद करते हैं तो कैसे, बाबा जादू, जादूगर है बाबा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्या होता है, एक बात, एक रूल है साइकोलॉजी में, अगर हमारे अंदर 0.1% भी संशय है ना, तो हमारा सबकॉन्शियस को एक्सेप्ट नहीं करता है ऑटो सजेशन को, तो 100% एकदम विश्वास होना चाहिए। 4 बातें चाहिए सफलता के लिए, निश्चय, विश्वास, एकाग्रता और दृढ़ता। जितना जितना हमारा निश्चय बैठता जाता है उतना विश्वास बढ़ता जाता है, जितना जितना विश्वास बढ़ता जाता है उतनी एकाग्रता होती जाती है, और जब एकाग्रता होती है तो दृढ़ता होती है, और दृढ़ता से सफलता मिलती है। तो दूसरा कदम हुआ वफादार, एक बाप दूसरा ना कोई। तीसरा है ईमानदार। हम कहते हैं तन मन धन सब तेरा, तो हमारी बड़ी दादी जी थे ना, हम बड़ी दादी से पूछते थे, तो दादी कहती थी, दादी हमारी जब कब लास्ट में जब बीमार हुई, तो उस समय दादी जी बहुत समय ऐसे ऐसे दादी योग में चली जाती थी, मतलब दादी मुस्कुराते रहते थे बैठे बैठे, तो मैं दादी से पूछता, दादी आप कहाँ थे, तो दादी हाथ से बोल भी नहीं पाती थी, दादी कहती ऊपर ऐसे इशारा करती थी, बाबा के पास थी। और दादी का हाथ देखो तो जैसे था ना मोम, उसका रुई का बना हुआ ऐसा हाथ, तो रोम रोम में, जैसे रोम हाथों में भी करंट है, रोम रोम में जैसे बाबा हो। तो ऐसे तन माना तन तेरा, अगर हम सचमुच तन को बाबा को तेरा करते हैं, ये तन बाबा का है मेरा नहीं है, तो तन में भी इतनी करंट आ जाए, रोम रोम में बाबा दूसरों को फील हो गए। मन बाबा का है, मन बाबा माना जो बाबा संकल्प मुझे देगा मैं वही संकल्प करूं, अपने मन से परमत से या मनमत से संकल्प ना करूं। मन में चार बातें होती हैं, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प। तो स्मृति में बाबा रहना चाहिए, वृत्ति सबके लिए आत्मिक होनी चाहिए, भावना सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना, ये बाबा की आज्ञा है, और संकल्प श्रेष्ठ शुद्ध और कल्याणकारी होने चाहिए। अब धन, सबसे बड़ा धन है समय, मेरा हर सेकंड बाबा की याद में बीते, याद और सेवा में बीते, ये बाबा की आज्ञा है, याद और सेवा में बीतना चाहिए, वो है सच्चा सच्चा ईमानदार। अगर मैं कोई भी संकल्प, अगर कोई भी सेकंड या संकल्प बाबा की याद के सिवा बिताता हूं या किसी और चीज में बिताता हूं, तो वो मैं बाबा का, बाबा से ईमानदार नहीं, बाबा की श्रीमत पे नहीं बिताया ना, क्योंकि ये तन बाबा का दिया हुआ है, अभी मन बाबा का दिया हुआ, धन बाबा का दिया हुआ, ये समय भी बाबा ने दिया है ना, ये संकल्प श्वास भी बाबा के दिए हुए, तो ये श्वास मेरे बाबा की याद में बीते, बाबा की सेवा में। दो बाबा के बातें याद और सेवा में बीतना चाहिए, हर समय हमारा, हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास। तो पहला खजाना है हमारा धन है, समय, दूसरा है श्वास, तीसरा है संकल्प, चौथा है बोल। तो मेरे हर बोल में बाबा होना चाहिए, ये बाबा ने कहा, ये बाबा ने कहा, ये बाबा ने कहा। फिर है हमारे कर्म अर्थात संबंध संपर्क, जब भी संबंध में आए तो लोगों को हमसे अनुभूति होनी चाहिए कि हाँ ये बाबा का बच्चा है, हमारे मां बाप को भी लगना चाहिए मेरा बच्चा नहीं ये बाबा का बच्चा है, हमारे बच्चों को भी जो सो कॉल्ड बच्चे हैं उनको भी लगना चाहिए ये बाबा के हैं। आप सिर्फ जिद ना करें कि नहीं पापा ऐसे करो, पापा ऐसे करो, मम्मी ऐसे करो, नहीं, ये बाबा की श्रीमत पे चलने वाले, उनको ऐसा फीलिंग आनी चाहिए। और फिर है स्थूल धन, स्थूल धन में बाबा की श्रीमत पे खर्च करें। और लास्ट में है फरमान बरदार, फरमान बरदार, दो बाबा के फरमान है मुख्य। पहला फरमान है सर्व खजाने के वर्षे में संपन्न बनो, संपन्न बनाओ। वही खजाने कौन कौन से मैंने बताया आपके, कौन कौन से हैं, समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये बाबा के मुख्य छह खजाने हैं। इन छह के छह खजानों में संपन्न बनना है हमको और दूसरों को संपन्न बनाना है। और दूसरा बाबा का विशेष जो फरमान है वो है याद और सेवा। तो ये बाबा के मुख्य मुख्य फरमान है। और एक बाबा, इसको फरमान कह लो या इसको आप डायरेक्शन कह लो, वो है, वही बात दोबारा से मैं इसमें लेके आता हूं। देह, अगर बाबा से मैं समान, तीन तरह से बाबा से मिलन मनाया जाता है। पहला मिलन मनाना बाबा से होता है, बाबा से ऐसे सामने देखा और आ गए, इसे भी बाबा से मिलना कहते हैं। एक होता है बाबा के सामने गए, बाबा ने हमें दृष्टि दी और हम बाबा से दृष्टि लेकर नीचे आ गए। तीसरा होता है बाप से समान बन के मिलन मनाना, अर्थात बाबा के सामने गए, बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ मेरी गोद में आओ, और फिर बाबा गोद में बिठा के आपसे कहे बच्चे आज आपको ये सेवा करनी है। तो तीन तरह का मिलन मनाना। तो अगर हमें तीसरी तरह का मिलन मनाना है, समान बन के मिलन मनाना है, तो उसके लिए बाबा ने कहा था, ये भगवान वाचा, शिव भगवान वाचा, गीता में भी लिखा हुआ है, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ को बुद्धि से भूल। पहले इसको भूले, भूल फिर अपने को आत्मा समझ, अर्थात पहले चारों को भूलेंगे तो अपने को आत्मा समझेंगे, फिर बामे कम याद करो, फिर सिर्फ मुझे याद करो, फिर बाबा को हम याद कर सकते हैं। अगर बुद्धि में देह याद है, देह के संबंध याद है, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार याद है, तो हम बाबा को याद नहीं कर सकते ना अपने को आत्मा समझ सकते। और उससे फिर विक्रम विनाश होंगे, और विक्रम विनाश होने से पावन सत्व प्रधान बनेंगे, और पावन सत्व प्रधान बनेंगे तो फिर बाप से समान बन के मिलन बना सकते हैं। तो ये बाबा की चार कदम कहो, तो ब्रह्मा बाप के समान बनने के लिए चार कदम हम सभी को फॉलो करने हैं। और जब हम ब्रह्मा बाप समान इन चारों कदमों पे चलेंगे, अर्थात चारों कदम पे कदम रखेंगे, तो इसी को फॉलो फादर कहते हैं, और इसी से हम बाप समान फरिश्ते बनेंगे, डबल लाइट बनेंगे और बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ओम शांति। आप अभी 2 मिनट बाबा को याद करके फिर उठेंगे।
अपने को अब अर्पण करें,
आरजू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें, आपके कदमों पे चल कर नाम हम रोशन करें,
आरजू है आप पर। आपके गुणगान स्वप्न में भी तन का कोई आने